ॐ अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम्बतोपिया या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सा भयाभ्यन्तरा शुचिः. The purpose of this human form of life is spiritual purification. Atato brahma jigyasa. Nayam deho deha bhajam naloke kastan manan karapi. Now that we have attained this very valuable and precious human form of life, we should not waste it like the animals who are simply in the pursuit of bodily maintenance, family maintenance, and sense gratification. Human life provides the most blessed opportunity to realize the eternal nature of the soul and our eternal relationship with the Supreme Absolute Truth. Human life is meant for the ultimate liberation from the bondage of birth and death, and entrance into the divine lila of the Lord. So, the scriptures explain that human life really and truly begins at the time when we receive knowledge from our spiritual master. Before that, we are preparing to begin real human life. The seed of devotion is the most precious and valuable commodity in all of existence. Chaitanya Mahaprabhu instructed Rupa Goswami that after roaming through this material existence for countless births, when one is most fortunate, he meets a bona fide spiritual master. And that spiritual master plants the seed of devotion within our heart. And what is initiation? Initiation means that we have come to make vow, a vow before God, who is standing before us in the beautiful form of the Murti. A vow before the Lord Vishnu, who appears within the sacred fire, in the presence of the spiritual master, who is representing all the previous acharyas, and in the presence of all the blessed Vaishnavas. Making this vow is the most serious thing you will ever do in your life. But the benefits come not by making the vows, but by keeping the vows. Initiation means the beginning of our real spiritual progress. At the time of initiation and making these sacred vows, that we will chant the holy names, the Hare Krishna mantra, at least 16 rounds every day, or at least 2 hours. We vow that we will follow strictly the four regulative principles: no illicit sex, no intoxication, no gambling, no meat eating. And we vow to be the humble servant of the servant of the servant of our spiritual master throughout our life. By keeping these sacred vows, purification takes place. Krishna says in Gita, Ragadveshava Muktaistu Vishayanandriyaischaran Atmavashayavadhyatma Prasadamarikachchati. By following these regulative principles of bhakti, as so mercifully given by the spiritual master, we are watering the seed of devotion within our heart. And we achieve the mercy of the Lord. And by the Supreme Lord's mercy, we can overcome all the obstacles on the path of bhakti. Today is Narasingha Chaturdasi. a very, very auspicious day to accept these vows in our life. Prahlad Maharaj was the perfect example of a devotee and a disciple. He heard the words of Narada, and he was faithful and chaste to his spiritual master under all circumstances. He could have lived a comfortable life in the palace of Hiranyakashipu. In fact, he could have been honored as the Yuvaraj, the prince who was upcoming to be the king of the entire universe. He had every possible material facility simply waiting for him. Hiranyakashipu conquered all the universe, all the demigods. Besides Brahma, Vishnu, and Maheshwar, they were all acting as his menial servants. And Prahlad was meant to inherit all of this. And it was all being given to him as a 5-year-old child. But Prahlad's spiritual master, Narada Muni, told him, "Why should you waste your human existence for these unimportant things? Human life is meant to serve Krishna, to purify our hearts and realize our eternal love of Krishna. Ultimately, that is the only thing that will satisfy our desires. By always remembering Krishna, we become purified. Krishna's pavitra, by chanting his names, by seeing his forms, by associating with his devotees, by hearing his glories. Through the 9 processes of devotional service, we can be connected to Krishna, and through that connection, we become completely purified. And in the pure state, pure bhakti awakens within our heart." Narada Muni told Prahlad, "This is the purpose of life." Prahlad was such a faithful and chaste disciple of Narada Muni. He would not allow anything or anyone to divert his attention away from his guru's order. On one side, Hiranyakashipu was saying, "Give up this nonsense and you'll be the king of the universe and you will have the most luxury, opulence, and enjoyment that anyone has ever had. But if you follow your guru, I will torture you and I will kill you and I will blaspheme you with harsh and angry words." This is the true meaning of a bhakta. This is the most perfect example of a disciple. Therefore, Vishwanath Chakrabarti Thakur has said, "Yavashayatma kabudhir ekeha kuru nandana bahushaka hyanantascha budhaya vyavashayanam." That those who are on this path, their aim is one. They make the order of Guru their life and soul. And what is the most important order of the spiritual master, which has the power to purify all the world? To always remember Krishna. To live a pure life. To chant his holy names. To work hard. To give others the opportunity to know Krishna. And to be the servant of the servant of the Lord's devotees. That's all. It is said in Chaitanya Charitamrita, "Katanchana smrite yashminduskaram shukaram bhavet, vismrite viparitam shat Sri Chaitanyam namamitam." That one who remembers Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, even the most difficult things become easy. But for one who remembers the Lord, even the easiest things become impossible. This is Prahlad's nature. With all easiness and grace, he passed through the most terrible, threatening experiences of life. And Krishna always protected his devotee. So we should imbibe this spirit. We should put our faith not in the propaganda of this material world, but we should put our complete faith in the Word of God, which is coming through the lips of the spiritual master and the Vaishnavas. So, really, you are all supremely fortunate. It is a day of celebration and rejoicing that by the grace of the spiritual master you're given this most blessed, sacred, and rare opportunity to eternally connect yourself with the grace of all the previous acharyas. So please be grateful, be thankful, and you can show your gratitude by how you are willing to follow the words of your guru throughout your life.
हरे कृष्ण. तो महाराज जी समझा रहे थे कि मानव जीवन का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि करना. ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन को पशु के समान बिता दें सिर्फ अपने परिवार के और शरीर के पालन करने के लिए. मानव जीवन ये एक अवसर है जिससे कि हम आत्मा का शाश्वत स्वभाव को जान सकते हैं और भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं. मानव जीवन की शुरुआत तब होती है जब हम सद्गुरु से ज्ञान ग्रहण करते हैं. श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को समझाया था कि जब जीव अनेक ब्रह्मांड में घूमता रहता है उसमें से कोई भाग्यवान जीव होता है उसको गुरु की कृपा से जो है भक्ति की बीज मिलती है. तो दीक्षा लेने का मतलब यह है कि हम भगवान के सामने जो कि अपने सुंदर श्री विग्रह के रूप में है और विष्णु के सामने जो कि अग्नि के रूप में है और गुरुदेव जो कि सभी पिछले आचार्यों के प्रतिनिधि हैं और सारे वैष्णवों के सामने हम ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं और यही सबसे गंभीर चीज है. और वास्तव में प्रतिज्ञा करने से लाभ नहीं है लेकिन प्रतिज्ञा का पालन करने के बाद उसका पालन करने में ही उसका लाभ है. और दीक्षा के समय मुख्यतः हम ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि कम से कम 2 घंटे या 16 माला भगवान का नाम जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे और नम्र सेवक के सेवक बनने का प्रयास करेंगे. तो जब हम ये प्रतिज्ञा का पालन करते हैं तब अपने आप हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है. जब हम नियमों का पालन करते हैं तब हम ये भक्ति की बीज को पानी दे रहे हैं और हमें भगवान की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती है. तो आज का दिन ये नरसिंह चतुर्दशी ये बहुत ही मंगलमय शुभ दिवस है इन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करने के लिए. प्रहलाद महाराज ये एक शुद्ध उदाहरण थे एक भक्त और शिष्य के. उन्होंने नारद मुनि जो उनके गुरुदेव थे उनके मुख से जो शब्द सुने उनका पालन किया. यदि वो चाहते तो वो राजा बन सकते थे सारे ऐश्वर्यों का लेकिन नारद मुनि ने समझाया कि आप मानव जीवन को क्यों व्यर्थ कर रहे हैं जो कि भगवान की सेवा के लिए है. हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण करने से हम शुद्ध हो जाते हैं और ऐसा करने से हमारा भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है. भगवान के प्रति सच्ची भक्ति जो है पुनः जागृत हो जाती है. सच्चे शिष्य का अर्थ यह है कि प्रहलाद महाराज की तरह अपने गुरु के प्रति नम्र भावना से जो है उनकी आज्ञा का पालन करना. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि जो इस मार्ग पर होते हैं उनका उद्देश्य एक ही होता है और सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा गुरु महाराज की है कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करें, हमेशा उनका नाम कीर्तन करें और उनके सेवकों का सेवक बने. चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि अगर श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करने से मुश्किल चीज भी सरल हो जाती है और उनको भूल जाने से सरल चीज भी मुश्किल हो जाती है. तो हमें भगवान के शब्दों में जो कि गुरु और वैष्णवों के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं उनमें विश्वास करना चाहिए. आप सब परम भाग्यवान हैं कि आज गुरु महाराज की कृपा से आप सब पिछले आचार्यों से संबंध स्थापित हो रहे हैं और आप इसके लिए कृतज्ञ रहिए और अपनी कृतज्ञता गुरु महाराज की आज्ञा पालन करके दिखाइए. हरे कृष्ण.
टुडे इट इज माय गुड फॉर्च्यून एज योर aspiring servant to perform this ceremony on behalf of His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I'd like to call one at a time the initiates to come forward. when I offer oblations of ghee to the sacred fire, along with the mantra Swaha, you take a small amount and offer it to the sacred fire. This fire sacrifice is not simply a ritual, but it is an ancient and traditional meditation and form of bhakti or devotion. By the invocation of mantra, the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, appears within these sacred flames of the fire. Just as the Lord appears in the Murti of Radha Gopinath, the Lord can enter into any substance. He appears as fire in order to burn the seeds of our previous karma. When we offer the grains to the fire and make these vows, by the grace of Gurudev and by the grace of the previous acharyas, Krishna is willing to consume, to burn the karmic influences of our past. And also it is an act of offering with these grains. We should be meditating that we are offering our life to be consumed in the service of Lord Hari. This should be our meditation. We should really be feeling with each swaha, and when we are offering our hearts, our body, our minds, our souls, our very lives for the pleasure of the Lord.
महाराज बता रहे हैं कि ये जो अग्नि ये यज्ञ है ये कोई रीति रिवाज बिल्कुल नहीं है बल्कि इसका बहुत गहरा मतलब है स्वयं भगवान विष्णु जो है जब मंत्रों के द्वारा प्रकट हुए अग्नि के रूप में और ये जो अग्नि है ये हमारे पहले के सारे कर्मों को भस्म कर देती है और जब हम अर्पण कर रहे हैं अग्नि में तो हमें समझना चाहिए कि हमारे सारे जो पिछले जो कर्म हैं वो नष्ट हो रहे हैं और हम अपना जीवन जो है भगवान श्री हरि के अर्पण कर रहे हैं अपना मन अपना आत्मा और अपना शरीर सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण कर रहे हैं अग्नि के द्वारा
Everyone, when we chant these mantras, chant with great enthusiasm, great devotion and great feeling. And let us chant very loudly as well.
और मंत्र जो है जितना जब जब मंत्र जब करते हैं तो उत्साह से भावना से और जितना जोर से हो सके उतना गाएं
For further details of this cassette, please contact Radhanath Swami Tape Ministry, Sri Sri Radha Gopinath Mandir, International Society for Krishna Consciousness. Address is 7 KM Munshi Marg, Chowpatti, Bombay 400007, India.
Generally immersed in relative conception of reality, more than the politicians, the lawmakers, more than all the philosophies and poets and authors of books. Guru means heavy, Prabhupada used to say. This means if you put all of these opinions on one side of the scale and Guru's opinion on the others, his outweighs. Because a bona fide spiritual master is simply repeating the word of God, the Shastra. And he is repeating it in its pure, unadulterated form as it is passed through the parampara of sadhus. So to inquire submissively means to accept that whatever knowledge, whatever information, whatever ideas I have accumulated throughout my life, they are no longer relevant. Now the only relevance is what comes through the mouth of Guru
the sadhus, and the shastra. And this is my guide to truth and reality. And on the basis of the word of the spiritual master, we must engage in humble service. To be the servant of the servant of the servant is the greatest desire of a bona fide spiritual master for his disciple. Yasya prasada bhagavat prasada, yasya prasada nagati kutopi. If we please Gurudev, Krishna is pleased. No need for any separate endeavor. If Gurudev is not pleased, then there is nothing within your power that you can do to please Krishna. We see in the Bhagavatam, even Indra, the king of the demigods, because when his Gurudev, Brihaspati, came into the arena and he did not please him, he did not show him proper respect, he fell down from his position as king of heaven until he regained the grace of his spiritual master. He had completely lost the mercy of God, of Krishna. So we must take this very seriously. To serve the spiritual master simply means to follow his instructions. The guru appears in two forms, vapu, which means his personal association, and vani, which means his instruction. The purpose of the vapu is simply to encourage us to surrender to the vani, the instruction. But the real relationship we have with our spiritual master is in executing his order, because his order is the order of Krishna. So it is this vow of submissively inquiring from our Gurudev and accepting his words as truth and willing to follow those instructions as our life and soul, that is the real meaning of this initiation. And the first and most important vow that the spiritual master asks us to take is to follow the four regulative principles and to chant the holy name of Krishna. We vow to never again engage in taking intoxication of any sort, of having any sexual relationship outside of sanctified marriage, and then for spiritual purposes. We vow to never intake any form of intoxication, to never gamble, and to never indulge in eating meat, fish, or eggs. These four regulative principles are not spiritual in themselves, but they bring us to the platform of the mode of goodness. It is said in the Shastra, until we come into the mode of goodness, we cannot transcend the modes of material nature. So when we follow these four regulative principles and accept the Yuga Dharma of the chanting of the holy name of Krishna, it is the name of Krishna that carries us beyond the three modes of material nature and awards us the eternal service of the lotus feet of Sri Sri Radhan Krishna. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu explained that those who are endeavoring to make spiritual advancement on this path of bhakti, they take the position like a gardener. The spiritual master plants the seed of bhakti, bhakti lata bij, within our heart. Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasadi by Bhakti Lata Bija. After wandering through so many millions and millions of species of life, through so many various universes, when one is supremely fortunate, he comes in contact by the mercy of Krishna with an authorized spiritual master. And that spiritual master grants to us the greatest treasure in all creation, and that is the seat of bhakti. By associating with the devotees of the Lord, that seed of bhakti is planted within our heart. And we must consider that there is nothing more important than nourishing and protecting that seed of bhakti. All other relationships, all other endeavors, they are all temporary, but this seed of bhakti is eternal. By following these four regulative principles, we protect that very, very small and immature seed from being disturbed in its growth. And by regularly chanting the holy names of the Lord, we water that seed. It is only the hearing and chanting of the glories of the Lord that gives nourishment to the seed of bhakti within us. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu has explained that we must very, very carefully, attentively, and regularly chant Harinam. When we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, we must be striving for the highest possible quality of attention as we are chanting. Whenever the mind wanders, yato yato nishchalati manas chanchanam ashtaram, we must immediately bring it back to the holy name. When we are chanting japa, we should never allow our mind to simply wander. Naturally it will wander. It is its conditioned nature. But we must drag it back to the sound of the name. How should we chant? Whichever way we can, with the highest quality, be attentive to the vibration of the name. Whether we chant silently within our mind, whether we chant softly, or whether we chant loudly our japa, it is not important the form, it is important the attention. But the principle is not the process of one way or another. The principle is to hear the name, to immerse our consciousness in the sound of Harinam. Kali Kale Namarupe Krishna Vata. Krishna has incarnated within the sound of his name. By hearing the holy name of Krishna, we are immersed in remembrance of Krishna. And as the mantra that Swamiji has chanted, has said, by remembering Krishna, we become purified within and without. And that is the whole purpose of this initiation. That is the whole purpose of this material world, ultimately, in this human form of life, is to become purified. So we must chant the holy name, very carefully guarding against these 10 offenses with great attention. And we must chant regularly. This is the vow that we are taking today, that we will chant at least 16 rounds of the Hare Krishna Maha Mantra, or at least 2 hours every day for the rest of our lives. This must be our priority. We may have so many other responsibilities in this world, but no responsibility is greater than preserving and honoring the most sacred vow you've ever made in your life before Radha Gopinath, the Supreme Personality of Godhead, before the spiritual master, the Vaishnavas, and the sacred fire. We must maintain and honor this vow as the basis of our entire life, the first priority and the utmost responsibility. And if we take this process of receiving the mercy of Gurudev and all the previous acharyas of the parampara seriously, then we are most fortunate. If we take this process of chanting the holy names and serving the Vaishnavas very seriously, we are guaranteed to attain the highest position of divine love at the lotus feet of Sri Sri Radha and Krishna. Man mana bhava mad bhakto madhyajim nam namaskar. Mame vaisheshi satyam te prati jani priyoshmi. Ragadveshava mukta ishtar vishayan indriya ishtaran atma vishaya vidhyatma prasadam arigachcha. Krishna says, if you always remember me and be my devotee, you will come to me without fail. And by following these regulative principles of chanting Maha Mantra 16 rounds every day, of following these four regulative principles, of learning how to be a proper servant of the Vaishnavas, Krishna says, you will attain the complete mercy of the Lord. And by His mercy, you will be free from all attachments and aversions. And you will attain the ultimate destination. Mahaprabhu explained, when the seed of bhakti grows through the process of chanting of the holy name and serving the Vaishnavas, ultimately that seed grows into a wonderful, formidable, indestructible tree. And then it bears its fruit. And that fruit is the fruit of love of God. And that fruit falls at the feet of Lord Sri Krishna. Our love is meant to be an offering to Krishna, and only to Krishna. And the sweetness of that fruit can satisfy the soul for all of eternity. But in this Gaudiya Vaishnava Parampara coming through Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, know that this is a preaching movement. We are not meant simply to enjoy tasting the sweetness of the fruit of the holy name. But we are all meant, according to our capacity, to assist in distributing the fruits of love of God, the fruits of Harinam, wherever we may be. According to the direction of Guru and the senior Vaishnavas, we should all be anxious to preach this message of Harinam Kirtan and assist the preachers of the message of Harinam Kirtan as our first and foremost duty in life. Thank you very much.
For further details of this cassette, please contact Radhanath Swami Tape Ministry, Sri Sri Radha Gopinath Mandir, International Society for Krishna Consciousness. Address is 7 KM Munshi Marg, Chowpatty, Bombay 400007, India.
Hare Krishna.
तो हरिनाम दीक्षा जो है वो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है. भगवत गीता में बताया कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा. ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और यही है आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत. दीक्षा का मतलब है कि हम इन दो सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, यानी परिप्रश्न और सेवया. परिप्रश्न का मतलब है कि हम नम्र बने और ये स्वीकार करें कि हमें कुछ नहीं पता है. ये जो दीक्षा है ये कोई साधारण फॉर्मेलिटी या रीति रिवाज नहीं है, पर ये एक नम्र बनने के लिए हम वचन लेते हैं। यहाँ तक कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने गुरु के सामने अपने आप को एक मूर्ख प्रस्तुत किया। तो जब हम इस तरह से नम्र बनते हैं तो हम गुरु के वचन को हम श्रवण कर सकते हैं। परिप्रश्निन का मतलब है इस गुरु के वचन में और गुरु की आज्ञा में दृढ़ विश्वास रहना। गुरु का मतलब है भारी। अगर हम एक तरफ गुरु के वचन या गुरु के आज्ञा को रखें और दूसरी ओर सारे दुनिया के विचार को, तो गुरु के विचार जो है वो और भारी होंगे। ये क्यों है? क्योंकि गुरु जो है, सदगुरु जो है, वो सिर्फ श्री कृष्ण के वचन को दोहरा रहे हैं। तो परिप्रश्निन का मतलब ये है कि हम अब ये विचार करें कि हमारे सारे जो भी पहले के विचार हैं वो सब व्यर्थ हैं। अब मेरे जीवन में सिर्फ गुरु महाराज के वचन, उनकी आज्ञा अभी महत्वपूर्ण है और यही सत्य है। तो इस तरह से गुरु महाराज के शब्द पे के आधार पे हम सेवा करें। तो गुरु महाराज की ये इच्छा होती है कि उनका शिष्य जो है वो दास के दास बने। जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और गुरु को हम खुश नहीं करते तो भगवान भी खुश नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है कि जब इंद्र ने अपने गुरु शुक्राचार्य को सम्मान नहीं दिया तो वो अपने स्थान से गिर गए। तो इसलिए हमें ये श्लोक जो है बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। गुरु की सेवा करना, इसका मतलब है कि उनकी आज्ञा का पालन करना। वापू का मतलब है कि जब हम गुरु के साथ में हो, और वाणी का मतलब है कि उनकी आज्ञा। तो सच्चा सेवा यह है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। तो इस वचन में हम ये वाव लेते हैं कि हम उनको नम्रता से हम सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। अब दीक्षा के समय हम मुख्य दो और शपथ लेते हैं, वो कि हम चार नियमों का पालन करेंगे और भगवान के नाम का जाप करेंगे। ये चार नियम जो हैं, ये वास्तव में अपने आप में आध्यात्मिक नहीं है, पर ये हमें सत्व गुण में लाते हैं। जब तक हम सत्व गुण में नहीं आते तब तक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत नहीं होती है, और फिर उसके बाद में भगवान के नाम का जाप जो है हमें सत्व गुण से आध्यात्मिक स्तर पर ले जा सकता है, जहां कि हम भगवान की, राधा कृष्ण की नित्य सेवा हम शुरू कर सकते हैं। तो गुरु एक माली के समान है जो कि भक्त के हृदय में भक्तिलता बीज बो देता है, और ये भक्तिलता बीज जो है भक्तों के संग में आकर ये धीरे धीरे से बढ़ने लगता है। इसलिए इसको हमें अच्छी तरह से इसकी रक्षा करनी है, और यही एक महत्वपूर्ण चीज है। बाकी सारे कार्य जो हैं ये व्यर्थ हैं। जब हम चार नियमों का पालन करते हैं तो हम इस भक्तिलता बीज को हम उसकी रक्षा करते हैं, और जब भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हम इस भक्तिलता बीज को पानी देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हमें भगवान के नाम का जाप जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहिए, और जब भी हमारा मन जो है भगवान के नाम से भटक जाता है तो मन को फिर से हमें भगवान के नाम पर खींच के ले आना है। और किस तरह से हमें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए? जिस तरह से हम ध्यानपूर्वक जपा कर सकें वो तरीका हमें अपनाना चाहिए, चाहे वो जोर से हो, मन में हो, या तेजी से हो, धीरे हो, जो भी हो, पर हमें ध्यानपूर्वक जपा करना चाहिए। कृष्ण ने अपने नाम में अवतार लिया है, और इनके नाम का जाप करने से हम कृष्ण के संग में आ जाते हैं और हम अंदर से और बाहर से शुद्ध हो जाते हैं। तो हमें बहुत ही केयरफुली हमें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, और 10 अपराध जो कि पहले पड़े गए थे उनसे हमें बच के रहना चाहिए, और हमें हर रोज भगवान के नाम का जाप कम से कम 16 माला करने चाहिए। और इस जिम्मेदारी से बढ़कर हमारे जीवन में और कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये जो वचन है हमने भगवान राधा कृष्ण के सामने, गुरु के सामने, वैष्णवों के सामने और पवित्र अग्नि के सामने हमने ये वचन लिया है। तो अगर हम ये जो मार्ग है ये हम सीरियसली अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम वास्तव में भाग्यशाली होंगे, और हम जीवन के सर्वोच्च स्थान जो कि भगवान का प्रेम है वो स्थान को प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर तुम हमेशा मेरा स्मरण करोगे तो तुम मेरे पास चले आओगे, निस्संदेह मेरे पास चले आओगे। तो जब हम ये सारे विधियां इनका पालन करते हैं और हम भक्तों की सेवा करना शुरू करते हैं तो हम धीरे से भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह से हम राग और द्वेष इनसे मुक्त होकर हम परम गति की प्राप्ति करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब ये भक्तिलता बीज धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो वह पेड़ बन जाता है और ये पेड़ का फल जो है वो है भगवत प्रेम और फिर ये फल जो है वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में जाके गिर जाता है और फिर जो जीव है वो इसकी मिठास ये फल का मिठास अनंत काल तक वो चख सकता है। पर हमारा जो हमारी संस्था है वो एक प्रचार की संस्था है तो हमें सिर्फ ये इच्छा नहीं है कि हम ये भगवान के नाम का फल जो है या भगवत प्रेम का फल हम इसकी मिठास चखते रहें, हमें इस फल को हर जगह बांटना है और हमें उन लोगों की भी मदद करनी है जो कि भगवान के नाम के प्रचार में लगे हुए हैं। हरे कृष्णा।